पंचाध्यायी लेक्चर नंबर 13 ओ नमः सिद्धेभ्य ओ नमः सिद्धेभ्य ओ नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयल्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूं तत्त्वं सल्लक्षणिकं सन्मात्रं वायतः स्वतः सिद्धम् तस्मादनादिनिदनम् स्वसहायम् निर्विकल्पम् च। यह ग्रंथराज श्री पंचाध्यायी है और हम उसके पृष्ठ संख्या 31 पर आ गए। 131 तक की गाथाएं हमने श्लोक पढ़े थे, अब आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ नई शंका और उपस्थित कर रहे हैं 132 नंबर के श्लोक में। ननु चैवं सति नियमात् इह पर्याया भवन्ति यावन्तः सर्वे गुणपर्याया वाच्यान् द्रव्यपर्यया केचित्। यदि गुण समुदाय ही द्रव्य है तो जितनी भी द्रव्य में पर्याय होगी उन सबों को नियम से गुणों की पर्याय ही कहना चाहिए। किसी को भी द्रव्य पर्याय नहीं कहना चाहिए, ये शंकाकार की एक शंका, उसके समाधान में भी यहाँ बताएंगे 133 से 135 तक। तन्नयतोस्ति विशेष सति च गुणानां गुणत्ववत्वेपि चिदचिद्यथा तथा स्यात् क्रियावती शक्तिभाववती शक्तिरथ च भाव शक्ति ही अथ च भाववती अथ का र हो गया शक्ति ही अथ। देखो शंकाकार का उपर्युक्त कहना ठीक नहीं है, तन्न अभी उसके लिए कारण बताएंगे यतः ने, क्योंकि गुणों में भी विशेषता है। गुणानाम विशेषः सति, यद्यपि गुणत्व धर्म की अपेक्षा से सभी गुण गुण कहलाते हैं, यानी प्रत्येक में गुण पना पाया जाता है तो उसकी अपेक्षा से तो सभी गुण ही है, तथापि उनमें कोई चेतन गुण है कोई अचेतन गुण है। जिस प्रकार गुणों में यह विशेषता है उसी प्रकार उनमें कोई क्रियावती शक्ति यानी गुण है और कोई भाववती शक्ति है, यह भी विशेषता है। यानी ज्ञान गुण चेतन है और बाकी अचेतन गुण है, ऐसे ही एक भाववती यानी एक क्रियावती शक्ति भी है यानी गुण और भाववती भी गुण है, उसी को समझाएंगे अभी। 134 नंबर। तत्र क्रिया प्रदेशो देश परिस्पंद लक्षणो वास्यात् भावः शक्ति विशेषः तत्परिणामोऽथवा निरंशांशैः। उन दोनों शक्तियों में प्रदेश अथवा देश का परिस्पंद यानी हलन चलन क्रिया कहलाती है। यानी क्रिया किसको कहना, तो प्रदेश उनके हलन चलन को परिस्पंद को क्रिया कहेंगे। और शेष विशेष भाव कहलाता है, यानी अन्य जो गुण है उनको हम भाव कहेंगे। प्रदेशों के परिस्पंद को क्रिया कहेंगे और अन्य गुणों के जो वहाँ होते हैं परिणमन उसको हम भाव कहेंगे या उसको गुण कहेंगे। ये उन्हीं को भाववती कहा है, उसका परिणमन निरंश अंशों द्वारा होता है, गुणों के निरंश अंशों को हमने अविभाग प्रतिच्छेद कहा था, तो उनके द्वारा उनका परिणमन होता है सभी गुणों का। अभी 135। यतरे प्रदेश भागास तत्तरे द्रव्यस्य पर्याया नामना, यतरे च विशेषांशः तत्तरे गुण पर्याया भवन्तेव। जितने भी प्रदेश अंश है वे द्रव्य पर्याय कहे जाते हैं। पहले बात आई थी हमने कि पूरे द्रव्य का जो चौड़ाई है उसको हमने देश कहा था, और उसके जो अंश बनाए थे उसको प्रदेश कहा था, और उसी को द्रव्य पर्याय भी कहने में आता है। तो कहते जितने भी प्रदेश अंश है वे द्रव्य पर्याय कहे जाते हैं, और जितने गुणांश है वे गुण पर्याय कहे जाते हैं। यानी जिसको हम अविभाग प्रतिच्छेदों में नापते हैं उसको हम गुण पर्याय कहेंगे। उसी का दूसरा नाम हमने अर्थ पर्याय भी देखा था। भावार्थ, प्रदेशवत्व गुण के जितने निरंश प्रदेश है उनमें से प्रत्येक को द्रव्य पर्याय कहते हैं। अब ये प्रदेशवत्व गुण के निरंश अंश बताए, उसी को हमने पूरे चौड़ाई का अंश बताया, यानी चौड़ाई को देश कहा था और उसके अविभागीय अंश को, निरंश अंश को प्रदेश कहा था। तो यहाँ प्रदेशवत्व गुण है उसके वो निरंश अंश ऐसा कह रहे हैं। एक एक प्रदेश है वो प्रदेशवत्व गुण के अंश है जिसको हम निरंश अंश कहेंगे। यानी प्रदेशवत्व गुण कैसा है तो द्रव्य की जो चौड़ाई है उसी को हम प्रदेशवत्व गुण कहेंगे। देखो प्रदेशवत्व गुण के जितने निरंश प्रदेश हैं उनमें से प्रत्येक को द्रव्य पर्याय कहते हैं, यानी प्रदेशत्व गुण के अंशों को यहाँ द्रव्य पर्याय कहेंगे, या पूरे प्रदेश गुण के पूरे को भी द्रव्य पर्याय कहेंगे। देखो यहाँ पर लिखा है, तथा प्रदेशत्व गुण के निमित्त से जो द्रव्य के समस्त प्रदेशों में आकारांतर होता रहता है उसे भी द्रव्य पर्याय अथवा व्यंजन पर्याय कहते हैं। एक गुण को अलग निकाला, चौड़ाई को बताने वाला है, फैला उसका, उसको यहाँ प्रदेशत्व नहीं कहा, प्रदेशवत्व कहा, और उसके अंशों को यहाँ प्रदेश कहा था, उसी को द्रव्य पर्याय कहा था, और उसके निमित्त से, उस गुण के निमित्त से द्रव्य के समस्त प्रदेशों में जो आकारांतर, आकारों का जो हर समय परिणमन होता है अलग अलग, तो उसको भी द्रव्य पर्याय, यानी द्रव्य पर्याय उस अंश को भी कहेंगे, या पूरे द्रव्य की जो उसका आकार है प्रदेशों का उसको भी कहेंगे, अथवा व्यंजन पर्याय कहते हैं। और बाकी के प्रदेश का अंश नहीं, निरंश प्रदेश, प्रदेश इटसेल्फ अंश है। जैसे निरंश अंश कहते हैं ना, कहाँ गया है, जितने भी प्रदेश अंश है, देखो कहीं कहीं देश को भी प्रदेश कहा है, और उसके अंश है ना एक एक प्रदेश। प्रदेश अंश को तो एक प्रदेश हुआ, देशांश को तो भी एक प्रदेश हुआ, अकेले प्रदेश कहो तो भी एक प्रदेश हुआ। यहाँ तो कहीं कहीं देश के लिए प्रदेश कहकर उसका अंश बनाया, कहना चाहते वो प्रदेश, यानी एक एक प्रदेश द्रव्य पर्याय कहलाए, और सभी प्रदेश मिलकर भी द्रव्य पर्याय कहे, दोनों ही उसको भी द्रव्य पर्याय कहे, दोनों को ही द्रव्य पर्याय कहे, पूरे द्रव्य की जो हो जाएगी उसको व्यंजन पर्याय भी कहे। तो ये हो गया व्यंजन पर्याय। और बाकी के गुणों के अंशों को, अंशों का नहीं, वो तो अविभाग प्रतिच्छेद है, और उनमें जो तरतम रूप से परिणमन होता है उसे गुण पर्याय अथवा अर्थ पर्याय कहते हैं। यानी ये तो बात हो गई ना, प्रदेशत्व गुण के परिणमन को हम व्यंजन पर्याय कहते हैं, और शेष गुणों के जो उसके अंशों को या तरतम रूप से परिणमन होता है उसको अर्थ पर्याय कहते हैं। अभी इसी का उपसंहरण है, अभी ये विषय समेटते हैं यहाँ। तत एव यदुक्त चरम विच्छेदादित्रयम् गुणानाम् हि अनवद्यमिदं सर्वं प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्धत्वात्। इसलिए पहले जो गुणों में उत्पाद वे द्रव्य बतलाया गया है वह सब प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध होने से निर्दोष है, यानी वो कथन है वो सही है, निर्दोष है। नोट, यहाँ तक गुणों को नित्यात्मक सिद्ध किया, अब गुणों के नामांतर बतला कर प्रत्येक को निरुक्ति अर्थ करके समझाते। निरुक्ति यानी वो शब्द कैसे तैयार हुआ, उसको कहेंगे उसकी निरुक्ति। हमने पहले भी ये नामांतर देखे थे, याद है ना? हाँ देखो, ये निकालो पेज नंबर 15। हाँ, 15 नंबर के पृष्ठ पर 48 नंबर के श्लोक के अर्थ में हमने गुणों के नामांतर देखे थे। शक्ति लक्ष्म विशेष धर्म रूप गुण स्वभाव प्रकृति और शील आकृति। अभी यहाँ नाम बताकर उसका कैसे तैयार हुआ शब्द वो यहाँ बताएंगे। इसके लिए 137 नंबर को हम पढ़ेंगे, 137 पेज नंबर 32। अथ चैतलक्षणमिह वाच्यं वाक्यांतर प्रवेशेन आत्मा यथा चिदात्मा ज्ञानात्मा वास एव चैकार्थ। अथ चैतत ने च एतत लक्षणम, वहां चेतन से कुछ नहीं बात, चैतत। अथ च एतत लक्षणम, अब गुणों का लक्षण वाक्यांतर द्वारा कहते हैं, दूसरी पद्धति से, दूसरी रीति से कहते हैं। जिस प्रकार आत्मा, चिदात्मा अथवा ज्ञानात्मा, ये सब एक अर्थ को प्रकट करते, आत्मा कहो चिदात्मा कहो ज्ञानात्मा कहो एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं, उसी प्रकार वह वाक्यांतर कथन भी एकार्थक है, अर्थात उसी अर्थ को व्यक्त करता है जिसको कि पहले कथन कराए। ये तो इंट्रोडक्शन है, वो कौन से अन्य शब्द है उसको अभी बताएंगे। 138 नंबर में तद्वाक्यांतरम एतद् यथा गुणासह भूपि चान्वयिन अर्थात् चैकार्थत्वात् अर्थादेकार्थवाचका सर्वे। वह वाक्यांतर इस प्रकार है, गुण सहभावी अन्वयी, ऊपर श्लोक में सहभू कहा था सहभावी और अन्वयी, इन सब का एक ही अर्थ है, अर्थात उपर्युक्त तीनों ही शब्द गुण रूप अर्थ के वाचक है, यानी वो गुण को बताने वाले हैं। भावार्थ, बहुवचन में गुणाहा सहभुवः अन्वयिनः अर्थाहा कहते हैं, और एक वचन में गुण सहभू अन्वयिन, वो उसका न का आधा नहीं को पड़ो पड़ो करना, उसका पाए मोड़ का ना, अन्वयी नू दिख रहा है ना, अन्वयिन आधा न, और अर्थ कहते हैं, ये ऊपर अर्थ शब्द नहीं लिखा था। गुण सहभावी अन्वयी अर्था कहा लिखा, हाँ तो श्लोक में है अर्थ में नहीं, अन्वयी के बाद अर्थ भी चाहिए। अर्थ शब्द डाला नहीं वहाँ, देखो श्लोक में कैसे लिखा, तद वाक्यांतरम एतत् यथा गुणाः सभुवः अपि च अन्वयिनः अर्थाः च एकार्थत्वात्, चयने और अर्थ ऐसा। हाँ, तो अन्वयी के बाद अर्थ डालना है। समझ में आई ना बात?
बहुवचन और एक वचन बता दो क्या कहना
चाहते। बहुवचन एक वचन इसलिए कहा कि वहाँ श्लोक में जो कुछ लिखा है, गुणाहा लिखा, सब हुआ है लिखा, अन्वयी न लिखा, तो उसका एक वचन क्या हो सकता है? जैसे गुण और गुणाहा, हिंदी में तो एक को भी गुण कहेंगे, अनेक को अनेक गुण है कहेंगे, वो है के ऊपर बिंदी होती है। संस्कृत में तो एक वचन अनेक वचन के उसके दो रूप अलग अलग है, इसलिए वो बता दिया यहाँ पर।
ऐसे जो उन्होंने जो नौ नाम बताए गुण के, वहाँ आगे 15 पेज पे अपन ने देखे, उस पे अन्वय नाम नहीं है। अन्वय नाम तो द्रव्य में,
द्रव्य में दोनों में आ सकता है, क्योंकि वही का वही ये जो प्रत्यय बन प्रतीति बनती है, इसलिए वो अन्वय नाम है। अभी यहाँ इसलिए आए हैं कि अभी उसके विशेषताएं बताते बताते इन नामों के द्वारा उनके और विशेषताएं भी ख्याल में आ जाती है। ये इसलिए ये सहभू कहा, ऊपर तो सहभुआ लिखा, सहभुव, और यहाँ स्वयं सहभू का निरूपण आगे करेंगे, वो उसी का एक वचन है, और उसका अर्थ कैसे घटित करना है, वो शब्द कैसे तैयार हुआ, वो यहाँ बताएंगे।
एक मिनट, श्लोक में 138 की पहली लाइन में
सहभुव
लिखा,
सहभुव सहभुव वह नहीं, वह वो का ओ हो गया, भुवः अपि, भुवः अपि, हाँ ये भुवः यही अनेक वचन है, और एक का है सहभू, ये एक वचन है। अब इनका क्रम से निरुक्ति अर्थ सहित निरूपण करते हैं, यानी शब्द कैसे तैयार हुआ, उसका मीनिंग क्या है, उस शब्द का मीनिंग, वो है तो गुण के लिए, तो कैसे तैयार हुआ उसको बताएंगे। तो सहभू का निरूपण 139 से 141 तक। सहसार्धं च समं वा तत्र भवन्ति इति सहभूव प्रोक्ता, अयमर्थो युगपत्ते संति न पर्यायवत् क्रमात्मान। सह, सार्धम और सम, इन तीनों का एक ही साथ रूप अर्थ है, यानी एक साथ होना ही उसका अर्थ है। एक ही साथ शब्द के लिए रूप लगा दिया हूं, क्या कहते हैं, सह का अर्थ एक साथ, सार्धम का अर्थ भी वही, और समय ने वो भी उसी का उसी अर्थ में यहाँ यूज किया है। गुण सभी साथ साथ रहते हैं, गुणों के समूह को, समुदाय को द्रव्य हम कहेंगे, वो एक साथ पाए जाते हैं, तो साथ साथ रहते हैं, इसलिए वे सहभावी कहे गए हैं। हिंदी में उसको सहभावी कहेंगे, संस्कृत में सहभू कहेंगे, या भावी भी कह सकते हैं। इसका यह अर्थ है कि सभी गुण एक साथ रहते हैं, पर्याय के समान क्रम क्रम से नहीं होते हैं। ऊपर लिखा ना, अयम अर्थो युगपत्ते संति न पर्यायवत क्रमात् माना, क्रमात् यानी क्रम क्रम से नहीं होते। सहवर्ती भी कर,
क्रमवर्ती
पर्याय को क्रमवर्ती, और ये सहवर्ती एक साथ होते हैं, उसी को यहाँ सहभावी कहा। अब यहाँ शंका और समाधान दोनों यहाँ बता रहे हैं 140 नंबर के श्लोक में। ननु सह समं मिलित्वा द्रव्येण च सह भुवो भवन्त्विति चेत् तन्नयतो हि गुणेभ्यो द्रव्यं पृथगिति यथा निषिद्धत्वात् निषिद्धत्वात्। शंकाकार सहभावी शब्द का अर्थ करता है कि गुण द्रव्य के साथ मिलकर रहते हैं। इसमें क्या दोष आया? हाँ, वो दो अलग हो जाएगी ना, तो द्रव्य क्या है? गुणों के समूह को तो द्रव्य है, तो द्रव्य के साथ और कौन से गुण मिलेंगे? ख्याल में आती है ना, कहने में दोष क्या आता है? गुणों के समूह को तो द्रव्य नाम दिया। ये कहते गुण एक दूसरे के साथ रहते ऐसा न मानकर ये शंकाकार मान रहा है द्रव्य अलग है और गुण उसके साथ रहते हैं। तो शंकाकार सहभावी शब्द का अर्थ करता है कि गुण द्रव्य के साथ मिलकर रहते हैं, इसीलिए वे सहभावी कहलाते हैं। परंतु शंकाकार की यह शंका निर्मूल है, क्योंकि गुणों से भिन्न द्रव्य कोई पदार्थ है इस बात का पहले ही निषेध किया जा चुका। पहले उस पर बहुत चर्चा हो चुकी थी अपनी, एक बाजू गुणों के समुदाय को रखो, एक बाजू द्रव्य को रखो, तो कहते दोनों से ही तो है। भावार्थ, सहभावी शब्द का यह अर्थ नहीं है कि गुण द्रव्य के साथ साथ रहते हैं इसलिए सहभावी कहलाते हैं, क्योंकि ऐसा अर्थ करने से द्रव्य जुदा पदार्थ ठहरता है और उस द्रव्य के साथ साथ रहने वाले गुण जुदे ठहरते हैं। परंतु इस बात का पहले ही निषेध किया जा चुका है कि गुणों से भिन्न द्रव्य कोई जुदा पदार्थ है, यानी इसका निषेध किया जा चुका है। इसलिए सहभावी शब्द का यह अर्थ करना चाहिए कि सभी गुण साथ साथ रहते हैं। द्रव्य अनंत गुणों का अखंड पिंड है। ये अनंत गुण तो समझाने के लिए हमने उसके कितने हैं तो गिने, परंतु है तो वो अखंड पिंड। उन गुणों में प्रतिक्षण परिणमन होता रहता है, यानी पर्याय होते अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक। उन गुणों के जितने भी परिणमन होते हैं उन सबों में गुण सदा साथ साथ रहते हैं, गुणों का परस्पर वियोग नहीं होता। परंतु पर्यायों में यह बात नहीं है, वे क्रमभावी है, यानी क्रम से होने वाली है, उनका सदा साथ नहीं रहता है। सदा साथ नहीं रहता है, वो एक के बाद एक होती है, एट ए टाइम तो सभी नहीं पाए जाते हैं। ऐसी कोई चीज है कि जहाँ सभी पर्याय एक साथ पाई जाती है? हमने देखा ये तो क्रमभावी है, एक के बाद एक होती है, सभी पर्याय मिलकर एक साथ होती नहीं है। तो ऐसी कोई जगह है कि जहाँ सभी एक साथ विद्यमान है? पर्याय रूप से कहाँ है? हम कहते पर्याय रूप से एट ए टाइम विद्यमान है, ऐसी कोई जगह होनी चाहिए विश्व में। केवल ज्ञान ग्रहण देखो, द्रव्य में तो अपनी केवल वर्तमान पर्याय विद्यमान रूप से, अस्थि रूप से मात्र वर्तमान पर्याय, भूत की तो हो चुकी है, भविष्य की होने वाली है, तो केवल ज्ञान में सभी एट ए टाइम विद्यमान है। वर्तमान वत है ना, वो सभी को एक साथ जान रहे हैं, उसी हिसाब से ज्ञान में विद्यमान है, हम ऐसा कहें। क्योंकि सभी पर्यायों को एक साथ गेय बनाया ना, केवल ज्ञान के गेय है वो सब। हाँ हाँ, जरूर बताइए।
यहाँ जो कह रहे हैं ये नीचे से चल रहे हैं, ये कह रही है आपके गुणों का परस्पर वियोग नहीं होता। ये जो लिखा है यानी गुणों का आपस में अविनाभाव संबंध है, वो परस्पर यानी एक रह जाए दूसरा निकल जाए ऐसा नहीं होता। उसका कारण क्या है?
नहीं, उन्होंने बता दिया, दोनों ने भी बताया, अगुरु लघु वो बिखर कर अलग अलग नहीं होते है ना, गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते, द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है, तो परस्पर वियोग नहीं होता, वो बिखर नहीं जाते, उसी के कारण है। वो तो बता दिया उन्होंने, उनका अविनाभावी संबंध है और वियोग नहीं होता, तो उसका कारण क्या है?
अन्य भी कारण नहीं आने चाहिए, आपने बताया।
परंतु पर्यायों में यह बात नहीं है, वे क्रम भावी है, उनका सदा साथ नहीं रहता, सदा साथ नहीं रहते, उनका साथ नहीं रहता ना, वे एक दूसरे के साथ सदैव नहीं रहते। जो पर्याय पूर्व समय में है वे उत्तर समय में नहीं रहती, इसलिए पर्याय क्रम भावी है। जो गुण पहले समय में है वे ही दूसरे समय में है, इसलिए गुण सहभावी है। एक्चुअली जो है वे ही है, वो तो अन्वयी के लिए लगाना था, ये उन्होंने सहभावी के लिए, ठीक है, इन्हें सभी गुण पहले समय में है, सभी गुण दूसरे समय में, ये इस अपेक्षा से सहभावी कह दिया। फिर दूसरी शंका और उसका समाधान 141 में, ननु चैव मतिव्याप्ति पर्यायेष्वपि गुणानुषंगत्वात् पर्यायः पृथगिति चेत् सर्वं सर्वस्य दुर्निवारत्वात्। यदि गुणों को साथ रहने से सहभावी कहा गया है तो यह लक्षण पर्यायों में भी जाता है, वे भी तो साथ ही साथ रहती है, इसलिए वे भी गुण कहलावेंगी, और यह अतिव्याप्ति दोष है। इस अतिव्याप्ति दोष को दूर करने के लिए आचार्य कहते हैं कि पर्यायों में गुणों का लक्षण नहीं आता है, क्योंकि पर्याय साथ साथ नहीं रहती किंतु भिन्न भिन्न रहती है। फिर भी यदि लक्षण को दूषित ठहरा जाएगा तो पर्यायों को भी अभिन्न मानने से, अवस्थाओं में भेद न रहने से सभी सब रूप हो जाएंगे, अर्थात फिर अवस्था भेद न हो सकेगा। एक ही समय में जीव नारकी मनुष्य तिर्यंच देव सब रूप ठहरेगा, क्योंकि पर्याय का कोई भेद ही नहीं मानता, एक साथ सभी पर्याय ऐसा मान रहा, एक के बाद एक होने वाली पर्याय एक साथ है, ऐसा इसका कहना है। अनंत गुणों की एक साथ होती उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो गुणों के ही अंश है, वो तो भले एक समय में जो परिणमन हो रहा है वो सब एक साथ भले है, परंतु यहाँ एक के बाद एक होने वाली पर्याय एट ए टाइम है, ऐसे शंकाकार का कहना है। जिस प्रकार जीव एक समय ज्ञान दर्शन सुखादि अनंत गुण रूप है, उसी प्रकार वह एक ही समय में मनुष्य देव नारकी होगा, क्योंकि आप पर्यायों को सहभू मानना चाहते हो। ये शंकाकार का उसका उत्तर दे दिया, ये सहभावी का भी उन्होंने बता दिया। अभी अन्वयीन का अर्थ करेंगे, अन्वयीन का निरूपण 142 से 156 तक। अन्वय का अर्थ होता है वह का वह, जैसे अन्वय और व्यतिरेक दो शब्द आते हैं, व्यतिरेक यानी वह नहीं, दूसरा चेंज हो जाना, वो व्यतिरेक, और अन्वय ने वही का वही होगा। अब यहाँ क्या कहते देखेंगे, 142 को पढ़ेंगे, अनुरित्य विच्छिन्न प्रवाह रूपेण वर्तते यद्वा अयतित्य यगत्यार्थात् दातोरंत अन्वर्थतोन्वयं द्रव्यम्। धातोरन्वर्थ, गुण को अन्वयीन कहते हैं और द्रव्य को अन्वय कहते हैं। सो पहले ग्रंथकार अन्वय शब्द की सिद्धि करते हैं। अर्थ, अन्वय शब्द में दो पद पड़े हुए हैं, एक अनु और दूसरा अय, उ का उ, ये व हो जाता है अन्वय, अनु और अय अन्वय। इस पद का, अनुपद का यह अर्थ है, पद यानी शब्द, देखो अ ये अक्षर हुआ और अनु ये पद हुआ, दो अक्षरों का एक शब्द हुआ, इसी को पद कहते हैं। अनुपद का यह अर्थ है कि बिना किसी रुकावट के अविच्छिन्न रूप से, अटूटक धारा प्रवाह से, यानी कंटिन्यूटी, अटूटक धारा प्रवाह यानी कंटिन्यूएशन में, अय पद गति अर्थक अय धातु से बना है। इसका अर्थ होता है कि गमन करे, चला जाए। अनु और अय इज इक्वल टू अन्वय का मिलकर अर्थ होता है जो बिना रुकावट के बराबर प्रवाह रूप से चला जाए, यानी जिसकी कंटिन्यूटी चलती रहे, अन्वय का अर्थ। ऐसा अनुगत अर्थ घटने से द्रव्य अन्वय कहलाता है। और गुण को अन्वयिन कह दिया। सत्ता सत्वं सद्वां सामान्यं द्रव्यमन्वयो वस्तु अर्थो विधिर्विशेषात् एकार्थवाचका अमी शब्दाः। ये एकार्थ के ऊपर का रफार हमने बाद में दिया है, एकार्थ हुआ था। एकार्थ अमी यानी ये शब्द, एकार्थ वाचक है। कौन कौन से? सत्ता सत्व सत् सामान्य द्रव्य अन्वय वस्तु अर्थ विधि, यहाँ विधि एक शब्द लगा दिया। ये सभी शब्द सामान्य रीति से एक द्रव्य रूप अर्थ के वाचक है। वहां तो हमने तत्व को भी दिया लिखा था, है ना? समुदाय और समुदाय और समुदाय को भी देखा। हाँ, धर्मी देश, उनमें से कुछ शब्द यहाँ ले लिए उन्होंने। अब 144 34 नंबर के पृष्ठ। अयमन्वयोस्ति एषाम् अन्वयिनस्ते भवन्ति गुणवाचा अयमर्थो वस्तुत्वात् स्वतः सपक्षान पर्यापेक्षा। यह अन्वय जिनके हैं वे अन्वयी कहलाते हैं। यहाँ बताए ना, ये तो पहले अन्वय यानी वो द्रव्य वस्तु अर्थ, उसके लिए अन्वय शब्द आ गया। और अन्वय जिनके हैं वे अन्वयी यानी गुणों को अन्वयी अन्वयी कहला, ऐसे अन्वयी गुण कहलाते। द्रव्य को अन्वय कहा और गुण को अन्वयी कहा। सारांश यह है, वे गुण वस्तुत्व रूप से स्वयं एक दूसरे के सपक्ष है, मित्र है, साथ मिलकर रहने वाले हैं। और एक गुण अपने को दूसरे गुण रूप प्रकट कर देता है। देखो, एक का दूसरे में रूप है कहते हैं ना, एक गुण अपने को दूसरे गुण रूप प्रकट कर देता है क्योंकि उन सबका अन्वय यानी द्रव्य एक है। किंतु एक दूसरे के विपक्ष यानी शत्रु मिलकर न रहने वाले नहीं है, जैसे पर्याय एक साथ मिलकर नहीं रहती है। और एक पर्याय अपने को दूसरे रूप नहीं प्रकट कर सकती। गुण क्या एक साथ है, एक द्रव्य में, उसे समुदाय ही तो द्रव्य कहलाता है। तो कहते एक गुण अपने को दूसरे गुण रूप प्रकट कर देता है क्योंकि सबका अन्वय यानी वही का वही बना है, जो द्रव्य वो एक ही है, इसलिए उसमें तो बात बनती है। पर्याय में ये बात नहीं बनती। ऐसे गुण नहीं है और वे गुण पर्यायों की अपेक्षा भी नहीं रखते हैं, जैसे सोने का पीला गुण चाहे कुंडल पर्याय में हो या कड़ा पर्याय में, वह अपने को पीला रूप प्रकाश करता रहेगा। उसको अपना स्वरूप दिखलाने में पर्याय की अपेक्षा नहीं है। ये ऐसे गुण नहीं है ना क्या, जैसे पर्याय एक पर्याय अपने को दूसरे पर्याय रूप प्रकट नहीं करती। गुण ऐसे नहीं है, वे तो एक दूसरे रूप से प्रकट करते हैं क्योंकि एक साथ रहते हैं। और गुणों में वो पर्याय की कोई भी पर्याय क्यों न हो, वो उसके पर्याय की अपेक्षा नहीं रखते हो। जो गुण है वो किसी भी पर्याय में प्रकट होता रहता है, उसको अपना स्वरूप दिखलाने में पर्याय की अपेक्षा नहीं है। इसी प्रकार जीव चाहे मनुष्य हो या देव, ज्ञान अपने को ज्ञान रूप गुण रूप से प्रकट करता ही है। यानी प्रत्येक गुण किसी भी पर्याय में क्यों न हो, गुण तो अपना स्वभाव प्रकट करता रहता है। अभी इसी का भावार्थ करके खोलकर समझाना चाहते हैं। प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है, उनके समुदाय का नाम ही द्रव्य या अन्वय या वस्तु है। उन सब गुणों का परस्पर में सपक्ष भाव है, विपक्ष भाव नहीं है, यानी वो विरोधी नहीं है, क्योंकि उनका अन्वय यानी द्रव्य वस्तु एक है। भेद दृष्टि से नाना होने पर भी यानी अनेक होने पर भी, भेद करके वो एक ज्ञान गुण है, एक सुख गुण है, चारित्र गुण है, वो अलग अलग हमको दिखाना है। भेद दृष्टि से नाना यानी अनेक होने पर भी, अभेद दृष्टि से सब गुण एक गुण ही है। किसी भी गुण की मुख्यता से कथन करते समय शेष गुणों का भी गौण रूप से उसी में कथन हो जाता है। आत्मा को ज्ञान मात्र कहने से वो अकेला एक ज्ञान गुण वाला नहीं हो जाता, उसके सभी गुण वहां आ जाते हैं। ये कथन में किसी एक की मुख्यता से कथन होता है और सब गुणों का रूप उसी में समाविष्ट हो जाता है। वह इस प्रकार जैसे सोने की लट को एक द्रव्य समझो, उसमें पीलापन भारीपन चिकनाहट गुण समझो, क्योंकि इनमें लक्षण भेद है। पर कमाल यह है, जब हम उस लट को पीले रूप से देखते हैं तो संपूर्ण लट पीले रूप दिखती है, भारीपन चिकनाहट कहीं अलग नहीं रह जाता। उसी प्रकार जब उसी लट को भारीपन से देखते हैं तो संपूर्ण लट भारीपन दिखती है, जब उसी को चिकने रूप देखते हैं तो संपूर्ण चिकनी दिखती है, और है भी ऐसा ही है। उस लट का नाम अन्वय है और तीनों गुण उस अपने एक ही अन्वय को बतलाते हैं, इसलिए गुण को अन्वयिन कहा। ये न आधा चाहिए, अन्वयिनु नहीं, अन्वयिन कहा न, जिसको कहे ना, हाँ न आधा लट यानी हम कहें लगड़ उसकी या लगड़ी, हाँ, या कोई भी उसका एक शेप बना दो ना। गुजराती में क्या कहते हैं वो नड़ी नहीं, देखो उसके ऐसे चौकोर ऐसे जो बनाते सॉलिड बनाते बिस्किट अलग, लगड़ी कहते उसको मराठी, लगड़ी कहते हैं। जैसे लाख लाख का आता है ना डंडे, हाँ वैसे उसका भी आता है, सोने का बनाते हैं उसको। देखिए गुण अनेक होने पर भी एक ही है, जो पीली है वही भारी है वही चिकनी है। दो चार दिन पहले हमने देखा था ना, हमने सोना खरीदी करने गए तो हमने तो उसको चूज किया, तो पहले वो पीला बराबर है कि नहीं देखा, डिजाइन देखे और पैसे देते समय वजन देखा, तो जब पीलापन और डिजाइन देख रहे तो वजन वहीं पर था, और जब पैसे वजन से दे रहे तो वहां पर उसके बाकी गुण तो वहीं पर है, क्योंकि द्रव्य तो वही का वही है उसको बताने वाला है। पर्यायों में यह बात नहीं है, वे मिलकर नहीं रहती, उनका अन्वय द्रव्य एक नहीं है, तथा एक पर्याय अपने को दूसरे रूप नहीं प्रकट कर सकती। देव मनुष्य इकट्ठे नहीं रहते, देव मनुष्य इकट्ठे ने एक ही जीव के देव पर्याय और मनुष्य पर्याय एक साथ नहीं रह सकते, ये कहना चाहते। ये अन्य जीव देव है अन्य जीव मनुष्य है उसकी बात नहीं है, आप कहेंगे समोचरण में इकट्ठे आते हैं ना, उसकी बात नहीं है। एक जीव के अलग अलग समयों में होने वाली पर्यायों की बात है। पर्याय दृष्टि से उनका द्रव्य भी जुदा जुदा है। अच्छा, ये अलग बात बता रहे हैं, यानी वो अलग अलग जीवों में जो अलग अलग पर्याय हैं उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर देव अपने को मनुष्य रूप नहीं प्रकट कर सकता, नहीं यही एक ही जीव की, एक ही जीव की बात, एक ही एट ए टाइम एक पर्याय होगी। कुंडल कड़े रूप नहीं दिख सकता, अतः वे भिन्न भिन्न व्यतिरेकी है। गुण को अन्वयी कहा था और ये व्यतिरेकी है, यानी भिन्न भिन्न है, अनेक है। इसी दृष्टांत को ग्रंथकार ने आगे जीव का दृष्टांत देकर समझाया है कि जीव में लक्षण भेद से ज्ञान दर्शन आदि अनेक गुण है, पर ज्ञान रूप देखने से सारा जीव ज्ञान रूप दिखता है। यानी पूरे अखंड जीव को हम ज्ञान रूप कहेंगे, ज्ञायक भाव कहेंगे, फिर भी वो अकेले एक ज्ञान गुण की बात नहीं है। इसके लिए समय सार परिशिष्ट में भी अमृतचंद जी ने स्वयं लिख दिया कि ज्ञान मात्र कहने से अकेला ज्ञान नहीं है, पूरा अखंड द्रव्य आ जाता है, अनंत गुणों का समूह आ जाता है उसमें अंदर। तो कहते कि लक्षण भेद से अनेक गुण है, फिर भी जब हम ज्ञान रूप से पूरे द्रव्य को देख रहे तो उसमें सभी गुण आ गए, तो सारा जीव ज्ञान रूप दिखता है। वही जीव दर्शन रूप देखने से दर्शन रूप दिखता है। जो जानने वाला है वही देखने वाला है, इत्यादि अनेक होकर भी एक है। खूब समझाया है, ग्रंथकार की बुद्धि की विचक्षणता है, इसीलिए गुणों में सपक्षपनायने मित्रता है, विपक्षपनायने शत्रुता नहीं है। इसी का विशेष स्पष्टीकरण आगे श्लोक नंबर 153 से 56 तक तथा 481 से 92 तक, यानी 492 तक किया है। यानी आगे इसी को फिर और हाँ देखो, पर्याय दृष्टि से उनका द्रव्य भी जुदा जुदा, इसी बात पूछ रहे थे। देखो, पर्यायों में यह बात नहीं है, वे मिलकर नहीं रहती, मिलकर नहीं रहती, एक के बाद एक रहने होने वाली पर्याय मिलकर नहीं रहती। उनका अन्वय द्रव्य एक नहीं है, यही बात बताना पूछना चाहते ना। देखो, हम पर्याय की तरफ से द्रव्य को देखेंगे तो वही का वही नहीं रहा, जो पहले मिथ्या दृष्टि था वो अभी सम्यक दृष्टि हो गया। पूरा द्रव्य मिथ्या दृष्टि था, अभी पूरा द्रव्य सम्यक दृष्टि हो। गुणों की अपेक्षा से देखेंगे तो जो गुणों का समुदाय पहले था वही गुणों का समुदाय अब है, तो उसमें तो वो अन्वय घटित होता है। पर पर्याय, क्योंकि पर्याय और द्रव्य कोई नहीं, वो सबको मिलकर एक अखंड वस्तु को देखना है। पर्याय की तरफ से द्रव्य को देखेंगे तो हर समय का द्रव्य अन्य अन्य पर्याय रूप से हो रहा है, इसलिए वो भिन्न भिन्न दिख रहा है। पर्याय को लेकर अभेद द्रव्य को देखेंगे हम तो द्रव्य भिन्न भिन्न हो जाएंगे, पर्याय की अपेक्षा लेकर साथ, पर्याय को छोड़कर नहीं देखना है द्रव्य, पर्याय को लेकर देखना है। क्योंकि अभी जो हम देव कह रहे हैं या मनुष्य कह रहे हैं, यहाँ लिखा है ना, पर्याय दृष्टि से उनका द्रव्य भी जुदा जुदा है। यानी जो जीव द्रव्य अभी मनुष्य पर्याय रूप से है, वो पूरे जीव को हम मनुष्य कह रहे हैं, वो आत्मा की पर्याय, वो असमान जाति को नहीं लेना, शरीर को लेना ही नहीं यहाँ पर, जीव की यह मनुष्य पर्याय चल रही है। तो पूरा द्रव्य मनुष्य रूप से है, वही अभी मरकर देव हुआ, तो पूरा वो जीव द्रव्य अभी देव पर्याय रूप से है। यानी वो पर्याय और द्रव्य मिलकर पूरा अखंड उसको लेना है ना, यहाँ प्रमाण का विषय लेना है, तो उसका द्रव्य ही जुदा जुदा है। हाँ, द्रव्य ही परिणाम, द्रव्य ही का पूरा द्रव्य परिणाम है, ख्याल में है ना बात। ये पर्याय दृष्टि से उनका द्रव्य जुदा जुदा, पर्याय दृष्टि डाली ना यहाँ पर, क्या कहा, पर्याय दृष्टि से द्रव्य को लिया, यानी पर्याय को इंक्लूड करके द्रव्य को देखा, तब द्रव्य ही जुदा जुदा। पहले बात आई थी ना, परिणमन की अपेक्षा पर्याय की अपेक्षा देखेंगे तो द्रव्य जुदा जुदा हो रहा है हर समय का, उसकी अपेक्षा से नया नया ये उत्पाद, वे तो इसी की अपेक्षा घटित किया था, पर्याय की तरफ से पर्याय को इंक्लूड करके द्रव्य का ही उत्पाद है, द्रव्य का ही व्यय है और द्रव्य ही कायम रहेगा, ये बात जैसे वही हुई। तो यहाँ पर्याय दृष्टि से ये शब्द महत्व का है। हाँ हाँ अच्छा है, पूछना। तथा देव अपने को मनुष्य रूप से नहीं प्रकट, जब वो द्रव्य अभी देव रूप से हुआ है, अब वो अपने को मनुष्य रूप से उसी समय नहीं हो सकता हो, क्योंकि उस पूरे द्रव्य की वो देव पर्याय चल रही, वो मनुष्य पर्याय उसकी भूतकाल की हो गई, एट ए टाइम दोनों नहीं हो सकते। ये और भी आगे पढ़ा समझाने वाले हैं तो उसमें और भी क्लियर हो जाए। अब आगे की जो उन्होंने रेफरेंस बताए हैं, अभी कल से 8-10 दिन का छुट्टी है ना आपको, हम जाएंगे होशंगाबाद, आप पढ़िए उसको, पक्का हो जाएगा, और कुछ नहीं। शंका, ननु च व्यतिरेकित्वं भवति गुणानां सदन्वयत्वेपि तदनेकत्व प्रसिद्धौ भाव व्यतिरेकतः सतामिति चेत्। शंका भी पूछ रहे, गुणों का सतरूप अन्वय एक होने पर भी उनमें व्यतिरेकीपना होना चाहिए, क्योंकि वे अनेक हैं और उन सतरूप गुणों में भाव से भी व्यतिरेकीपना है, जैसे ज्ञान में जानने का भाव है, दर्शन में देखने का भाव है, इस प्रकार सब में भिन्न भिन्न भाव है, अतः वे व्यतिरेकी होने चाहिए। यदि ऐसा कहो तो, ये शंका करने शंका पूछी, भावार्थ इन्हें शंका को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अनेकों में ही व्यतिरेक घटता है, अनेक तभी घटित हो गई, तो जो एक दूसरे के समान नहीं तब हम उसको भिन्न गिनेंगे, ये उसका कहना है कि अनेक है वहां व्यतिरेक घटित होता है, गुण भी अनेक है इसलिए उनमें भी व्यतिरेक घटना चाहिए। फिर गुणों को अन्वयी ही क्यों कहते हो, उनके व्यतिरेकपने में यह युक्ति है, उन सबके लक्षण भाव कार्य भिन्न भिन्न है, सबके नाम भी भिन्न भिन्न है। अब ये उसकी जो शंका है 146 में उसका समाधान करते, तन्नयतोस्ति विशेषो व्यतिरेकस्यान्वयस्य चापि यथा व्यतिरेकिणो यनेके एकस्यादन्वयी गुणो नियमः। शंकाकार की उपर्युक्त शंका ठीक नहीं है, क्योंकि अन्वय और व्यतिरेक में विशेषता है, यानी डिफरेंस है, व्यतिरेकी अनेक होते हैं और सब अन्वयी गुण नियम से एक होता है। अब व्यतिरेकी अनेक कैसे, ये आगे 147 से 52 तक स्पष्ट समझाया है, यानी अभी आने वाले श्लोकों में। तथा गुण अनेक होने पर भी एक अन्वयी कैसे है, यह आगे 153 से 56 तक तथा आगे 481 से 492 तक स्पष्ट समझाया है। क्योंकि ये जो शंका है तो हमें भी ऐसे लगता है ये वो नहीं है, तो इसमें व्यतिरेक कहो ना, तो पर्याय को व्यतिरेक ही कह रहे हैं और गुणों को अन्वयी कह रहे हैं, ये तो शंकाकार की शंका है, उसी को यहाँ समझाएंगे आगे। अब देश व्यतिरेक, क्षेत्र व्यतिरेक, काल व्यतिरेक, इस तरह से यहाँ पर भाव व्यतिरेक करके वो व्यतिरेक को समझाना चाहते हैं। 147 स यथा चैको देश स भवति नान्यो भवति च चाप्यन्य सोपिन भवति सदेशो भवति सदेशश्च देश व्यतिरेक। वह व्यतिरेक इस प्रकार है कि व्यतिरेक क्या है उसको समझा रहे, जो एक देश है वह वही देश है, वह दूसरा देश नहीं है। हाँ, और वह दूसरा देश भी वह पहला देश नहीं है, किंतु वह दूसरा देश ही है। यह देश व्यतिरेक है, आपको समझना है। वो टाइल्स देखो, हमारे एक एक स्क्वायर टाइल है, तो जो एक टाइल है वो दूसरी नहीं है, वो जो दूसरी है वो आगे की या नेक्स्ट वाली नहीं, पहली की या तीसरी नहीं है। हर एक पर लगा लो, हर एक अलग अलग है। ये देश व्यतिरेक कह रहे हैं। देखो फिर कहेंगे, पढ़ेंगे इसको। ये देश व्यतिरेक जो एक देश है वह वही देश है, वह दूसरा देश नहीं है। जो एक नंबर का प्रदेश है, एक नंबर का प्रदेश है वो वही है, वो दूसरे नंबर का प्रदेश नहीं है। और वह दूसरा देश यानी प्रदेश है वह भी पहला प्रदेश नहीं है, किंतु वह दूसरा प्रदेश वो दूसरा प्रदेश ही है। यह देश व्यतिरेक है। दो परिघटित क्या है? एक है वो एक ही है, वो दूसरा पहला ही है, वो दूसरा नहीं है, और दूसरा है वो
पहला
नहीं, वो दूसरा दूसरा ही है। भावार्थ, यह ध्यान रहे कि यहाँ दो द्रव्यों की बात नहीं है, एक ही द्रव्य के दो प्रदेशों में। एक द्रव्य का दूसरे में अभाव देश व्यतिरेक नहीं है, वो तो अत्यंत अभाव हो जाएगा। लिखा है आगे, वह तो द्रव्यों का अत्यंत अभाव है, यहाँ तो एक ही द्रव्य का कथन चल रहा है। यहाँ एक ही द्रव्य के जो बहु प्रदेश है वे आपस में व्यतिरेक रूप है। यानी प्रत्येक जब जीव असंख्यात प्रदेशी है तो उसका एक एक प्रदेश भिन्न भिन्न है, एक प्रदेश दूसरा प्रदेश नहीं है। जो एक प्रदेश है वह वही प्रदेश है, वह दूसरा प्रदेश नहीं है। जो दूसरा प्रदेश है वह दूसरा ही है, वह पहला नहीं है। इस प्रकार एक द्रव्य के जितने भी प्रदेश है वे परस्पर व्यतिरेक रूप है। इन प्रदेशों के व्यतिरेक को देश व्यतिरेक कहते हैं। यदि आप यहाँ एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव को व्यतिरेक अर्थ देंगे तो सारे ग्रंथ का ही अर्थ गलत हो जाएगा। ये प्रवचन सार में इसका दृष्टांत देकर वो पर्यायों का प्रबंध को समझाया। जैसे आप अभी जो प्रदेश ने टाइल्स को देख रहे हैं, एक टाइल फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी, क्रम से है, तो आप उसको देखते थे कोई क्रम बदल सकते हो उसका? तो जहाँ पर है वही उसी क्रम से पाया जाएगा, भले वो एक प्रदेश सभी ओर से अन्य अन्य प्रदेशों द्वारा वो घेरा हुआ है, परंतु उसका क्रम तो वही बना रहेगा। ऐसे ही यहाँ पर्यायों के क्रम में जो पर्याय जिस स्थान पर है वो वहीं पर है, सुनिश्चित है, घड़ी हुई है, उसको वहां से कोई हटा नहीं सकता। प्रदेशों का जैसा क्रम बना रहता है वैसे पर्यायों का भी क्रम बना रहता है। अभी क्षेत्र व्यतिरेक 148। अप्यश्चैको देशो यावद् अभिव्याप्य वर्तते क्षेत्रम् तत्तत् क्षेत्रम् नान्यत् भवति तदन्यश्च क्षेत्र व्यतिरेकः। और जो एक देश जितने अपने क्षेत्र को व्याप कर रहता है वह उसका क्षेत्र है, दूसरा नहीं है। और उससे दूसरा देश जितने अपने क्षेत्र को व्याप कर रहता है वही उसका क्षेत्र है, पहले वाला क्षेत्र उसका क्षेत्र नहीं है। यह क्षेत्र व्यतिरेक है। भावार्थ, यह ध्यान रहे कि यहाँ पर क्षेत्र अर्थात आकाश क्षेत्र की बात नहीं है, यहाँ पर क्षेत्र अर्थात आकाश क्षेत्र की बात नहीं है, क्योंकि प्रकरण एक ही द्रव्य का है। और यह भी ध्यान रहे एक द्रव्य के द्रव्य क्षेत्र काल भाव का जो दूसरे द्रव्य के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में अत्यंत भाव है, उसमें क्षेत्र का जो अर्थ है वह भी यहाँ नहीं है। वहाँ तो यह अर्थ है एक द्रव्य के जितने प्रदेश हैं, उनका दूसरे द्रव्य के प्रदेशों में अभाव। प्रत्येक का अपना अपना स्व क्षेत्र, वो अपने प्रदेश है। वह अर्थ भी यहाँ नहीं है। तो यहाँ क्या अर्थ है? यहाँ तो यह अर्थ है एक द्रव्य का एक प्रदेश अपने जितने क्षेत्र में है, अर्थात वह प्रदेश ही उसका क्षेत्र है। उस क्षेत्र का उसी द्रव्य के दूसरे प्रदेश के क्षेत्र में अभाव है, यह क्षेत्र व्यतिरेक है। यानी प्रत्येक प्रदेश अपने अपने क्षेत्र में है। हम कहते हैं आकाश के एक प्रदेश में तो अनेक असंख्या प्रदेश है, फिर भी अपना अपना हर एक का अपना अपना क्षेत्र जुड़ा हुआ है। ये बात घटित हो रही है। अब यही रुकेंगे हम। जावानी ते ज्ञान ते सुखे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा।